ये आकाशवाणी दिल्ली है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण से पहले लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए कार्यबल गठित किया और रेलवे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कल लगी आग के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इस आग के बाद से स्थानीय निवासियों को जहरीले धुएं का सामना करना पड़ रहा है। लोग सांस लेने में भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। स्थानीय निवासी प्रियंका झा ने बताया कि पहले भी यहां आग लग चुकी है और लोगों को हर बार जहरीले धुएं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार कचरे के विशाल पहाड़ से उत्पन्न गैसों के कारण कल देर शाम गाजीपुर स्थित लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने गाजीपुर स्थित कूड़े के ढेर में लगी आग को लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया है। उनका कहना है कि यहां लगी आग से लगातार जहरीला धुआं निकल रहा है, जिससे राजधानी के निवासी प्रभावित हो रहे हैं। श्री लवली ने कहा कि इस आग को बुझाने के लिए केन्द्र सरकार और दिल्ली नगर निगम को आपस में समन्वय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लैंडफिल साइटों पर मलबा डालना बंद हो और इसके लिए सरकार को नए स्थान तलाशने चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मधुमेह के इलाज के लिए रोजाना अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श करने की अनुमति मांगी थी। याचिका में मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल करने और उपस्थित रहने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हालांकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया, जो इस बात पर फैसला करेगा कि श्री केजरीवाल को इंसुलिन देने की आवश्यकता है या नहीं। न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री को सभी आवश्यक चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन किसी विशेष उपचार के मामले में जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह लें। न्यायाधीश ने मेडिकल बोर्ड से श्री केजरीवाल के लिए आहार और व्यायाम की योजना भी तय करने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रवर्तन निदेशालय और तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुगर की दवा इंसुलिन न मिले, इसके लिए दोनों संस्थान न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। आज एक प्रेसवार्ता में मंत्री आतिशी ने कहा कि दोनों संस्थानों ने कोर्ट को बताया है कि मुख्यमंत्री को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टरों को दिखाया गया है, जो झूठ है। मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री को न्यायालय में पेश किए जाने तक उनका एम्स के किसी भी शुगर विशेषज्ञ से परामर्श नहीं करवाया गया। सुश्री आतिशी का कहना है कि मुख्यमंत्री अपने निजी डॉक्टर से शुगर को लेकर बात नहीं कर सके, इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय और तिहाड़ जेल प्रशासन दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण से पहले लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए कार्यबल गठित किया है। इसमें चुनाव आयोग, मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। ये कार्यबल लू के प्रकोप से निपटने के उपायों की समीक्षा करेगा। निर्वाचन आयोग मतदान केन्द्रों पर शामियाना, पेयजल, पंखे और अन्य ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग से समीक्षा बैठक भी करेगा। देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान की खबरों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने आज आगे के मौसम की स्थिति पर नजर रखने और गर्मी से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी उपस्थित रहे। मौसम विभाग ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि 26 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के समय गर्मी को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन था। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की 2-2 सीट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक देश के पूर्वी हिस्से में लू का प्रकोप जारी रहेगा। बुधवार से इसका दायरा और बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में भी लू चलने की संभावना है।
पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में भी लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने भीतरी कर्नाटक, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी तेज गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। ओडिशा, रायलसीमा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तेज और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं स्पर्श सक्सेना।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे से लू की रोकथाम और बचाव विषय पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह और सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता रात 9:30 बजे से 011-2342-1050 और 011-2331-4444 टेलीफोन नंबर पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रोता हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी इस प्रसारण को सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मंगोलपुरी वार्ड से निगम पार्षद नरेंद्र कुमार ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के उप महापौर पद से अपना नामांकन वापस ले लिया है। श्री कुमार ने पिछले सप्ताह उप महापौर पद के लिए नामांकन किया था। आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए देवनगर से निगम पार्षद महेश खींची और उप महापौर पद के लिए अमन विहार वार्ड से निगम पार्षद रविन्द्र भारद्वाज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आप पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में नगर निगम का चुनाव लड़ रही है। दोनों पदों के लिए चुनाव 26 अप्रैल को किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने बीते एक महीने से कामकाज करना बंद कर दिया है और इस दौरान मंत्रिमंडल की कोई भी बैठक नहीं हुई है। श्री बिधूड़ी ने बताया कि मॉनसून मौसम के दौरान दिल्ली में जल भराव न हो इसके लिए अभी तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार काम करने के बजाय झूठे आरोप लगाने में व्यस्त है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष दस्ते ने प्रतिष्ठित कार कंपनियों के नकली सुरक्षा उपकरण बनाने वाले तीन लोगों को राजधानी के माता सुंदरी रोड से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से पौने 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 900 से अधिक सुरक्षा उपकरण एयरबैग जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर राजधानी में चल रहे नकली सुरक्षा उपकरण बनाने वाले 2 कारखानों पर छापा मारा गया और नकली सामान जब्त किया। दुर्घटना की स्थिति में कार में लगे सुरक्षा उपकरण एयरबैग कार सवार को क्षति नहीं पहुंचे ये सुनिश्चित करते हैं। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इसके तहत अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 1 से 21 अप्रैल के बीच 41 करोड़ से अधिक लोगों ने रेल से यात्रा की। रेल यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात किया गया है। अप्रैल महीने में मनाए जा रहे ऑटिज्म माह के तहत आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी से जुड़ी विभिन्न जटिलताओं के बारे में जागरूकता लाना और उनके निदान के बारे में जानकारी देना था। ऑटिज्म के बारे में जानकारी देते हुए बाल रोग विभाग की चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन की प्रमुख प्रोफेसर शेफाली गुलाटी ने बताया कि ऑटिज्म एक तंत्रिका विकास संबंधी विकार है जिसके कारण बच्चे सही समय पर बोल नहीं पाते और लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के इस विकार का निदान 12 से 18 महीने की उम्र में ही किया जा सकता है। प्रोफेसर गुलाटी ने बताया कि एक अध्ययन में यह पता चला है कि बच्चों में ऑटिज्म के मामले बढ़ रहे हैं और 36 में से एक व्यक्ति ऑटिज्म से ग्रसित है।
स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसमें सोशल इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और इन कई बच्चों में कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं, ताकि अगर कोई साउंड नहीं भी आ रहा आसपास तो कान पे हाथ रख लेंगे या कुछ साबुन वगैरह को स्मेल करेंगे। साथ में इनके अंदर जो है कुछ रिस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेस्ट होते हैं, कुछ दोहरावनीय व्यवहार होते हैं, कुछ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, कभी टॉयज को एक बार साथ में लाइन लगाना या रैपर्स ऑफ चॉकलेट से इकट्ठा करना वगैरह। तो ये वाले बच्चों के अंदर जो के अंदर है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर 6 महीने में बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और अगर उसका विजन और हियरिंग सही है, 12 महीने पे बच्चा बड़बड़ा नहीं रहा है और उसके अंदर साथ में आता बाय बाय नहीं कर रहा, या 16 महीने पे बच्चा अगर कोई एक शब्द मीनिंगफुल नहीं बोल रहा, या 24 महीने पे 2 शब्द विद मीनिंग नहीं बोल रहा, या कभी शब्दावली आई और भूल गया है और हम जैसे आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं बात करते हैं वो आई कॉन्टैक्ट पूरा नहीं बनाते मोस्ट ऑफ द टाइम, तब ये सब चीजों में ऑटिज्म हो सकता है।
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए। इस पर AFMS के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंजन बनर्जी ने हस्ताक्षर किए। इसमें नवीन चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और नवाचार करना तथा विभिन्न इलाकों में सेवारत सैनिकों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करना शामिल है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में समर्थन के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस बार का विषय है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। राजधानी में आज दिन भर धूप खिली रही और मौसम साफ रहा। आज का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका भी व्यक्त की है। अधिकतम तापमान कल 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण से पहले लू की स्थिति पर नजर रखने के लिए कार्यबल गठित किया और रेलवे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।